أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1979 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ لقمان کی آیت 22 سے ہو رہا ہے، 31/2. اس سے پہلی آیت یعنی پچھلے درس کی آخری آیت جو زیر تدریس آئی، اس میں دو اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. ایک ہی بات اس کے دو اہم گوشے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی دفعہ یہ آیت نہیں آئی، بار بار دہرائی گئی ہے. عام ترجمہ تو یہی ہے اس کا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی طرف آؤ، اس کا اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے قوانین کے مطابق چلو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اسلاف جس طریقے پہ چلتے آئے ہیں ہم اسی طریقے پہ چلتے جائیں. اور قرآن کریم نے ان کی اس ذہنیت کی اتنی مذمت کی ہے، باعث عذاب بتایا ہے. اور عذاب یہ کہا ہے جہنم کے متعلق، قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن اسے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان بھی ہوتے ہیں ان سے سننے کا کام نہیں لیتے. یعنی بتایا یہ کہ یہ جو مسلک ہے یا یہ جو ذہنیت ہے کہ نہیں، جس طریقے کے اوپر ہم چلتے آ رہے ہیں، اسلاف سے جو طریقہ ہم نے پایا ہے ہم اسی پہ چلتے جائیں گے، کبھی کھڑے ہو کے سوچیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں کہ کیا یہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے. تو کہا کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ دو چار نسلوں تک اگر یہ روش متواتر چلی آئے تو سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں پہلے مفلوج ہو جاتی ہیں، بالکل بعد میں بالکل مصروف ہو جاتی ہیں. وہ کل انعام کہا قرآن نے پہلے کہ وہ انسانی سطح پہ رہتے ہی نہیں ہیں، حیوان کی سطح پہ رہتے ہیں. تو پہلی چیز تو حیوان کی سطح ہے، اسلاف کا راستہ. آج بھی بھیڑ اسی طرح سے وہ کچھ کرتی ہے جس طرح سے کہ 10 کروڑ سال پہلے کی بھیڑ کیا کرتی. ہر بھیڑ، آنے والی بھیڑ، جانے والی بھیڑ کے راستے پہ چلتی. بھیڑ کا میں نے اس لیے کہا کہ محاورہ ہمارے ہیں بھیڑ چال، ورنہ وہ حیوان جتنے بھی ہیں وہ اپنے اسلاف کے راستے پہ چلتے ہیں. لیکن قرآن نے کل انعام کہنے کے بعد انسانوں کے متعلق کہا، یہ انسان جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جس راستے پہ متواتر ہمارے بڑے بوڑھے چلے چلتے آ رہے ہیں. انعام کہہ کل انعام کہہ کے آگے کہتا ہے بل ہم اضل، وہ حیوان قابل مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی ہی نہیں گئی. ایک متعین راستے پر چلنا ان کی فطرت تھا، اور انسان کی تو فطرت کوئی نہیں، اسے تو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی اور دو راستے دکھائے. ان ہدینا ان نجدین، حیوانات کو دو راستے نہیں دکھائے گئے. اور اس کے بعد یہ کہ اس کی طرف وحی کے ذریعے سے قوانین خداوندی بھیجے گئے، ہدایت دی گئی. اور اس کے باوجود اگر یہ وہ روش اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اسی پہ مصر اور بزد رہتے ہیں جو حیوانات کی روش ہے، یعنی جس طریقے پہ پچھلے چلتے آئے ہیں اسی پہ چلتے جائیں گے، تو کہا کہ یہ کل انعام نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں. قرآن کریم نے اس ذہنیت کی بڑی مذمت کی ہے. مان اللہ کے اتباع میں اس کے تابع چلنا، اس کی اطاعت کرنا دین ہے. یہ ذہنیت کے نہیں، جس راستے کے اوپر چلتی آ رہی ہے قوم، ہم چلتے آ رہے ہیں، جو متواتر ہم تک پہنچ رہا ہے ہم اسی پہ چلتے جائیں گے، یہ مذہب ہے. تو مذہب میں ہوتا یہ ہے کہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. ان کے ہاں تو کل بدعت دلالت و کل دلالت فی النار، ہر نئی چیز یعنی اس راستے سے ہٹی ہوئی جو چلا آ رہا ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جا سکتی. یہ قرآن کریم کی بنیادی اصولوں میں سے ایک بات ہے جو اس نے یہ بتائی ہے. یہ مسلک اور یہ روش جو ہے اس کی اس نے بڑی ہی مذمت کی, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر صرف مذہب کے دائرے تک ہی نہیں محدود رہتا. جس قوم کی نفسیات یہ ہو جائے اس کی زندگی کے ہر دائرے میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دائرے کے اندر سفر کرتی ہے. یعنی سارا دن چلتا رہتا ہے, وہ جو محاورہ ہے کولو کا بیل, وہ شاید 50 میل کا سفر طے کر لیتا ہوگا لیکن شام کو وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے صبح چلا. قرآن کریم نے جو صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا سکھائی, تمنا سکھائی, آرزو سکھائی, مقصد سکھایا, تو صراط سیدھا راستہ ہوتا ہے. اس سے اس نے امتحان کیا ہے. یہ اس سے پہلے جو چلا آ رہا تھا ایک تصور یونانی کہ زندگی سائیکلک آرڈر میں چلتی ہے, چکر میں چلتی ہے, آگے نہیں بڑھتی, اسی چکر میں چلتی ہے. یہ بات داستان لمبی ہو جائے گی, مجھے ضرورت نہیں یہاں دہرانے کی. قرآن کا اتنا ہی ہے کہ وہ صراط پہ چلاتا ہے, سیدھے راستے پہ چلاتا ہے. تو سیدھے راستے پہ چلنے والے کا تو ہر قدم جو ہے پچھلے قدم سے آگے بڑھے گا, آگے چلے گا. وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ سفر کرتا رہے لیکن آگے نہ بڑھے. وہ تو قرآن تو انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے, وہ اس کو ارتقائی منازل طے کرانے کے لیے آیا ہے. اسی لیے صراط مستقیم کے ساتھ اس نے خدا کو ذی المعارج بھی کہا ہے, سیڑھیوں والا خدا. تو خدائی رنگ جب اپنے اندر رنگنا ہے, یہ ہے اسلام, تو پھر تو سیدھا بھی جانا ہے اور بلندیوں کی طرف بھی جانا ہے. اور اگر کیفیت یہ ہے کہ جہاں 10,000 سال پہلے یا 1,000 پہلے جس مقام کے اوپر ہمارے بڑے بوڑھے کھڑے تھے, اسی مقام کے اوپر آج ہم کھڑے ہیں, تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے, یہ سائیکلک آرڈر ہے. اور اسی کی مذمت قرآن کرتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا اثر جو ہے, نقصان جو ہے, مذہب کے دائرے تک ہی نہیں رہتا, زندگی کے سارے گوشوں کو متاثر کر جاتا ہے. کبھی آپ تکسیلا گئے ہوں تو وہ تو آثار کریمہ کی ایک بستی ہے, پتہ نہیں 4,000 سال 5,000 سال پہلے کی. اس کا ایک میوزیم ہے, میوزیم نے شیلف کے اندر انہوں نے وہ 5,000 سال پہلے جو کچھ اس بستی کے اندر سے چھوٹی موٹی چیزیں روزمرہ کے استعمال کی نکلی تھی وہ وہاں لگائی ہوئی. عورتوں کے پہننے کے زیورات, ان کے کپڑے, یہ اوزار, ہتھیار, کھانے پینے کی چیزیں, گھر کے اندر کا چولہا چمٹا, یہ سارا کچھ, یہ سارا وہاں انہوں نے رکھا ہے 5,000 سال پہلے کا. میں نے انہیں دیکھا باہر نکلے تو سامنے وہ تکسیلا کا گاؤں تھا, اب تو شہر سا ہے لیکن ایک بستی تھی. اس بستی میں سے جتنی عورتیں نکل رہی تھیں انہوں نے وہی کچھ پہن رکھا تھا جو میوزیم کے اندر رکھا ہوا تھا. اس بستی میں لوہار کی دکان پہ گئے, ترہان کی دکان پہ گئے تو جو اوزار اس میوزیم میں رکھا ہوئے ہیں تکسیلا کے, وہی ان کی دکانوں میں آج بھی تھے. اور چولہا, توا, چمٹا تو ہمارے گھروں میں بھی وہی تھا جو وہ تکسیلا میں رکھا ہے. یعنی اس 5,000 سال کے جو استعمال کی چیزیں بھی تھیں وہ آج بھی اسی مقام پہ وہیں اسی طرح سے بنتی ہیں. دنیا چاند پہ چلی گئی, یہاں ہمارے ہاں توے میں فرق نہیں آ گیا. یہ آپ کے یہاں کا یوں ہی کوئی چیز لے لیجیے, گاڑا جسے کہتے ہیں, گڈا ساڑھے جنوں کہنے, وہ یہ لے لیجیے اور وہ ٹیکسیلا میں جو ہے اسے جا کے دیکھ لیجیے. یہاں آج بنانے والا ترخان کا بیٹا جو بنا رہا ہے تو ادھر بیٹھا ہوا وہ جو بوڑھا ہوکا پی رہا ہے وہ کہنا بے پیڑیا بے مرشدیا تیرے پیو نے اتنے متھل لائی تھی کہ کل لایا تھی. یعنی متھل تو ہوتی ہے, وہ یہ لکڑی کا لگایا جائے اور کیل یہ لوہے کی. اگر وہ کہیں اس کی جگہ لوہے کی کیل یا نیخ لگاتا ہے تو وہ وہاں سے بولتا ہے اسے بے پیرا بے مرشدہ کہندا. پیرو مرشد وغیرہ تو وہ ہے نا جو جہاں اس نے متھل لائی تھی یہ متھل لائے, जबकि ये उसके तरीके से चलेगा। और अगर यहाँ उसने वो मथल की जगह मेख लगा दी है तो ये फिर बेपीरा बे मुर्शदा हुआ। और आपको मालूम नहीं ये बेपीरा बे मुर्शदा होना कितनी बड़ी गाली है। नतीजा ये है कि हुई लाख दुनिया इधर की उधर है, वही संगे दर है, वही अपना साथ खड़ी है। कौन साथ तो शाम पत्थर की चट्टानों की तरह, भूतों की तरह, मुर्दों की तरह उसी मकाम पे खड़ी। मनुष्यदा लाशें होती हैं अफराद ऐसी कौम के, इंसान जीते जागते मुतहर्रिक नहीं होते। और फिर ये माशरे के माशर की जिंदगी के ऊपर असर पड़, ये जितनी रसूमात हमारे यहाँ होती हैं वो वही चीज हो रही है जो हजार साल पहले होती थी, 10,000 साल पहले होती थी। कोई शादी ब्याह मरने जीने की पैदाइश की रसूमात आप देख लीजिए। पिछले दिनों एक घर में से पता चला कि वो साढ़े दो जी रोड़ी कहने, उर्दू में उसे भेली कहते गुड़ की, वो गुड़ की रोड़ी लग देते सर। आज का लगभग तो गुड़ मिलता ही नहीं, मिले भी तो वो ऐसा नायाब हुआ वो कहने की 14 रुपए शेर एक था लब जाएगा गुड़ की रोड़ी लग गई है। तो उन्होंने पूछा कि ये गुड़ का जो लोही हकीम ने कितने नुस्खे लिखा है, कहने की नहीं है वो शगन को देना है ना, तो गुड़ ही दिता जाता है, खंड नहीं दिखी जाती है, शगन च गुड़ दिता जाता खंड नहीं दिखी जाती। तो गुड़ पैर लग दे है गुलबर्ग जी जितना जी जाए समझाइए आप कि साहब इसकी जगह से आप घर भी कुछ गोड़ी दे दो गुड़ की गोड़ी जाए, कहने की नहीं है तो शगना की गल हुई ना, वो तो बिछगनी हो जाती है। ये क्या है बाल मकतब मावजत ना रहे आबान, जिंदगी के हर शोबे में गिर। और कभी आप हिसाब लगा के देखिए कि आपकी शादी ब्याह यही जो मैंने करना मरना जीना तो उस पर हकीकी खर्च कितना होता है और इस बल बजदना आबादना के मुतल कितना खर्च होता है। दुल्हन आ रही है घड़ी है दरवाजे के ऊपर बिल तेल ले मर जाएंगे तेन तेल कैसे बताइए तो सही, यानी वो कड़वा तेल चाहिए सरसों ही नहीं होती मुल्क में याद। ये घर के अंदर जहां बिजलियां जलती हैं ये मिट्टी का तेल नहीं घरों के अंदर अब होता है, वो कड़वा तेल कहां से हो। और एन उस वक्त अब ढूंढने पड़ रही है, वो अंदर जा नहीं सकती जब तक वो कड़वा तेल, तो कड़वा तेल होने बाद द्वार साफ ही थे, द्वार साफ ही नहीं हुई दरवाजे में उन्होंने क्या उन्हें चोना ही कहते नहीं जा नहीं सकते। घर से जुदा हो रही है ठहरो ठहरो अभी नहीं क्यों फिर यो चौलों का छटा देना नहीं दे तुम चौल लाब दो फिर हो जाना। यानी ये चीजें जो हैं यूं ही बड़ी दहेज हैं, ज़हनियतों के अंदर चली गई हुई होती। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि उस दुल्हन को तेल चोया बगैर अंदर ले जाए तो जिंदगी में कई हवादिस होते हैं, रोग होते रहते हैं। अब वो चीज खटक रही है, अल्लाह खैर करे रोटी नू बेशगने अंदर ले अंदर अल्लाह खैर करे। यानी हर वक्त अब रेन पे चीज सवार होती है तो हो ही जाता है, यानी कुछ हो जाए और उतो आवाज आ जाती है तुसी उठ पुट जानी पढ़ लिख गई ना हूं तो मैं उस दिन कह रही सर तुम कि ना लगाओ इन के बगैर तेल चुनाव अवेख ले जाना हूं की होया। ये अजीजा ने मन ये महज बातें नहीं जो घरों के अंदर हमारे यहाँ होती, घरों में नहीं होती, बाहर माशरे में ये कुछ हो रहा है। ये सारी चीज वो है जो मस्जिद में पैदा की गई होती। बाल नो माँ बजत ना अलह है अब आप देख रहे हैं आपको आज मुसीबत कितनी पड़ गई। चलिए जरा ऊपर की सतह के ऊपर बड़ी खुशकम बात थी कि इस दौर में हमारे यहाँ एहजाए इस्लाम के मुतल्लिक कुछ बातें चली, कुछ कोशिशें भी हुई, मैं उन पर नहीं तनकीद करना चाहता। लेकिन जितने लोग इसके लिए बैठते हैं कोशिश करते हैं, पहली उनकी कोशिश तहकीक ये होती है कि इस मामले के मुतल्लिक अमीर का इंतखाब, पार्लियामेंट का दर्जा, मुशावरत कैसे होगी, कानून कैसे बनेंगे,
पहली चीज ये होती है कि मायावती ने क्या इसके मुतालिक लिखा है, कि नेतान्याहू क्या कह रहे हैं इसके मुतालिक, यानी बैठे हुए हैं खुद ये चीजें तहकीक करके कुछ नए सिरे से बनाने के लिए। और तहकीक ये हो रही है कि साथ हजार साल पहले की फलाह किताब ने क्या लिखा है और उसने ये क्या लिखा, सारे झगड़े उसमें होते हैं। तुम्हें भी अन्य सदूर ने तो ये कहा है, मावर्दी ये कह दिया है, अब उनमें टकराव होता है आपस में बैठे हुए, इस टकराव को सुलझा रहे हैं और दौर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं, सिरा मिलेगा मान अल्लाह में। नतीजा ये है कि कोशिशें इतनी होती हैं लेकिन साइक्लिक ऑर्डर के अंदर होती, दायरे के अंदर होती, नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन, एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए कि उन्होंने जो तरीका चला आ रहा था हजार साल पहले, जो किसी ने उनके यहाँ की किसी सल्तनत ने, जितनी सल्तनतें आपके यहाँ गुजरी हैं सदर अजल के बाद मुसलमानों की सल्तनतें थी, अब उनको उन्होंने इस्लामी सल्तनतें फर्ज कर दिया। तहकीक ये होती है कि उनमें क्या तरीका राय था, अव्वल तो तारीख ही आपके यहाँ की ऐसी नहीं जो काबिल एतमाद हो, और अगर हो भी तो वो उस दौर के तकाजों के मुताबिक अपने लिए उन्होंने कोई रास्ता तजवीज किया था। आपके जमाने के तकाजे बदल गए, आपके जमाने के हालात और तवायफ बदल गए, उनके मुताबिक ये सोचिए कि क्या करना है। लेकिन यहां तो मुश्किल ये है कि ये दायरे लगाते हैं तो इसमें तो ये ढूंढिया पड़ती है कि साहब ये देखिए ना कि फलाह ने क्या कहा किया, फलां दौर में कैसा हुआ, पहले दौर में किस तरह से हुआ, ये सारा कुछ जितना भी है ये तो नाग बनाल जिसे कहते हैं कदम ब कदम, एक एक कदम उसके मुताबिक सारी तहकीक इसके ऊपर के वो कैसे होते थे, कैसे रहते थे, कैसे करते थे, बल्कि उससे आगे जाते हैं तो और भी संगतें लानी शुरू करती हैं बड़ों। इन सारी जिंदगी के अंदर तो ये कुछ होता है, कभी ये नहीं सोचते कि वो तो एक मस्जिद नबवी जिसके ऊपर खजूर के पत्तों की छत पड़ी हुई थी और नीचे कच्चा फर्श था, वहां बैठ के ये सब सुलझाते थे और आप इंटरकॉन्टिनेंटल में बैठे हुए, यानी ये दोनों खिलाफ जो तरीका आप तजवीज कर रहे हैं इसके लिए वो असलाफ के तरीके के खिलाफ ना हो। हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, इतने इतने बड़े होटलों में रह रहे हैं, कारें इतनी इतनी बड़ी हैं जिसमें सफर हो रहा है, इसमें तो असलाफ का रास्ता जो है वो याद नहीं रहता। लेकिन ये कि सलवार की लंबाई कितनी होनी चाहिए इसके लिए असलाफ की सलवारें ढूंढते फिरते, ये देखना जिंदगी के अंदर फिर इस तरह तजाद वाकया हो जाता है। कुरान सिराते मुस्तकीम कहता है और उसके लिए फिर रास्ते के बाद उसने आवारा नहीं छोड़ दिया, उसने मान लल्ला आपके लिए कसौटी दे दी है, न तो आना का सवाल नहीं है, और उसने इसीलिए इसको मुकम्मल भी कह दिया, गैर मुतबद्दल कह दिया, महफूज कर दिया, अपने जिम्मे ले लिया खुदा ने इसकी हिफाजत को। तो ये कहते हैं कि ठीक है आप हिफाजत तो इसकी करते रहिए, हमारे तो किसी काम में ही आता नहीं, हम तो बल वजदना अला आबा, बल मा वजदना अला है आबाना वाली बात करेंगे, वो किताबें संभाल के रखेंगे, वो पढ़ाएंगे दारुल उलूमों के अंदर, उसके दस्तारे फजीलत हम देंगे। आप तो मालूम है कि इनके यहाँ 9 साल का जो कोर्स होता है दारुल उलूमों का आमतौर पर साथ का दोस्त आगे बढ़ाते हैं, 9 साल के इस कोर्स में कुरान करीम आखिरी साल में सिर्फ सूरह बकरा की एक तस्वीर पढ़ाई जाती, वो भी असराफ की तस्वीर आज के दौर की नहीं। तो ये चीज जो है मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान ने बार बार ये जो कहा है तो इसका ताल्लुक सिर्फ मजहब से ही नहीं है, ये जो ज़हनियत है, ये जो मसलक, ये जो नफ्सियाती तहसीत पैदा हो जाती है कौम के अंदर, तो जिस तरह से होता चला आ रहा है उसी तरह से होता चला जाए कौम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। कुरान तो इंसान के लिए इर्तकाई मनाजिल बताता है, वो तो सिरात मुस्तकीम पे चलाता है, दायरे में नहीं चलाता। इसलिए मसलक ये है दीन का, کہ خدا کی کتاب آپ کے پاس آخری سند حجت اتھارٹی کساٹی اسے دیکھیے، اپنے زمانے کے حالات دیکھیے، اور وہ قرآن جو ہے خدا خبیر و علیم نے قیامت تک ساری نو انسان کے لیے ضابطہ دینا تھا، اسے ہونا ہی یہ چاہیے تھا کہ وہ حدود تو مقرر کرتا ہے، لمٹس مقرر کرتا ہے، باؤنڈریز مقرر کرتا ہے، اس کے اندر کی جزیات خود نہیں دیتا، وہ یہ تو کہتا ہے کہ امر و انشورا بہنوں باہمی مشاورت سے اپنے معاملات جو ہیں طے کرو، اس مشاورت کی ڈیٹیلز نہیں دیتا، تفصیل نہیں دیتا، وہ اے ڈبلو کہتا ہے عدل کرو، وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ اس عدل کرنے کے طریقے کیا ہوں گے، پروسیجر کیا ہوگا، یہ تو بدلتے رہیں گے سارے دور، ہر زمانے میں بدلتے رہیں گے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، ان کی جزیات، طریقے عمل، پروسیجر وہ خود متعین کرو، یہ طریقے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے چلے جائیں گے، اور وہ غیر متبدل باؤنڈری لائن جو ہے وہ اپنے مقام پہ رہیں گی۔ یہ تو عزیزان من سمجھنے کے لیے ہاکی یا فٹ بال کے میچ کا میدان جو ہے اسے دیکھی، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی جو باؤنڈری لائن یا اس کے لیے جو قواعد و ضوابط مقرر ہوتے ہیں وہ تو اپنے مقام پہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دونوں ٹیمیں آزاد ہوتی ہیں اس بات میں، لیکن اس آزادی میں بھی ایک پابندی ہوتی ہے کہ اس 11 کھلاڑیوں کے سامنے ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک ڈیسٹینیشن ہوتا ہے جسے گول کہتے ہیں، گول کے معنی نصب العین ہوتا ہے، ان میں سے ہر کھلاڑی خواہ وہ دائیں پہ ہے، بائیں پہ ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، کہیں بھی ہے، مختلف مقامات کے اوپر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لیکن ہر ایک کی توجہ نگاہ جو ہے اس گول کی طرف ہے کہ وہاں میں نے گیند پہنچانا ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں کا جو کیپٹن ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ٹیم کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی یہی گول ہوتا ہے کہ میں نے گیند وہاں پہنچانا ہے، وہ بھی ان قواعد کا پابند ہوتا ہے، وہ جو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، باؤنڈری لائنیں بھی، اندر کی لائنیں بھی، چھوٹے چھوٹے قاعدے بھی، پاؤں نہ لگے، ہاتھ نہ لگے، یہ کچھ نہ ہو، خواہ وہ کیپٹن ہے، خواہ وہ پلیئر ہے، وہ باؤنڈری لائن جو ہیں وہ ہیں حدود اللہ جسے کہا گیا ہے قرآن میں، ان کو کراس نہیں کر، بلکہ ان کے تو وہ کہتا ہے قریب بھی نہ جانا، ہو سکتا ہے نا کہ ذرا زور سے گیند لگ جائے اور وہ باہر چلا جائے، لا تقرب، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن باؤنڈری لائن ان کے اندر آپ کو آزادی دی ہے اس میں کہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق آپ سب کو خود کیجئے، پلیئر کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ زور سے اٹھ لگائے، آہستہ اٹھ لگائے، ذرا دائیں کو کر دے، بائیں کو کر دے، اس کی پوری آزادی اس کو ہوتی ہے، یہ ہے ذہنیت جو قرآن نے پیدا کی ہے عزیزان ایمان، کہ غیر متبدل قوانین و حدود خداوندی کے تابع اندر رہتے ہوئے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جزیات، پروسیس، پروسیجر خود طے کیجیے، اس پہ جب بھی آئے گی کوئی قوم وہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آگے ہی نہیں بڑھتی، قرآن کہتا ہے وہ تو امام الناس ہو جاتی ہے، نو انسانی کی امامت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، مشرق مغرب کا جو ہے وہ تو دائروں کے اندر جا رہا ہے، اصناف کے کسی کے اندر ما وجدنا علیہ آبان، مغرب نے آزادی حاصل کی تو اس نے وہ حدود ہی توڑ دی، یعنی اب اس کے لیے کوئی غیر متبدل حدود ہے نہیں، تو جب غیر متبدل حدود باقی نہ رہیں تو اس ہاکی کے میدان کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس میں دونوں ٹیمیں ان حدود اور ان قیود کا کوئی خیال نہ کریں جو رکھی ہوئی ہیں، اور وہ چلے دونوں سٹکیں ہاتھ میں لی ہوئی ہوں اور اس کے بعد وہ ہوں 22 وہاں، تو پھر کیا ہوتا ہے جو اقوام مغرب میں ہو رہا ہے، وہاں حدود کے نہ ہونے نے اس قدر خلفشار مچا رکھا ہے، تو اور اس خلفشار کا تو پھر ان کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے آپ، قوتیں ہوں چاند تک پہنچنے کی، حدود اور قدود کو متعین نہ ہوں قوموں کے لیے، تو پھر ظاہر ہے وہی جو ہاکی کے میدان میں سٹکیں چلا کر دی، اور یہاں یہ مذہب پرست جو علاقہ ہے اس کے یہاں صورت یہ ہے कि हजार दस हजार चार हजार पांच हजार साल पहले जहां से कोई काम शुरू हुई थी उसी मकाम में चक्कर लग रहा है, दायरे में लग रहा है, एक कदम आगे नहीं बढ़ नहीं सकता। आप देखते हैं कि कुरान बात तो ऐसे करता है जैसे कि मजहब की दुनिया की बात है, लेकिन वो तो जिंदगी के हर गोशे को मुहित है। इसीलिए बार बार वो ये कहता है, तीन कौमों से जब ये कहिए कि ये आपके पास सनद और हुज्जत और कसाकी जो है वो खुदा की किताब है, तो कहते हैं कि नहीं, असलाफ का मसलक जो है वो है जिसके ऊपर हम चलते चले जाएंगे। शैतान आंखें बंद किए चले जाएंगे, खा इनको शैतान बघेल के जहन्नम में ही क्यों ना ले जाए, और जहन्नम में तो होती है ये कौन जो अपनी सोच समझ से काम नहीं लेती और खुदा की गैर मुतबद्दल हदूद के अंदर काम नहीं लेती। जहन्नम इसी को कहते हैं, जहन्नम के लफ्ज जहीन है कुरान में, जहीन कहते उस मुकाम पे हैं जहाँ कोई चलने से रुक जाए, सोच रहे हैं और यहाँ बड़े फखर से ये चीज कही जाती है, हम तो उसी रास्ते से चलेंगे, आगे बढ़ने से रुकी हुई कौन, जहीन कहा ये इनका मसलक है। अब हम आते हैं आज की आयत पे, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ کہا ایک تو وہ تھی، وہ مسلک تھا، وہ ذہنیت تھی کہ نہیں خدا کی دی ہوئی اقدار کی اوپر احکام سے نہیں، جس مسلک پہ چلے آ رہے ہیں اس پہ چلے آئیں گے۔ کہا اس کے مقابلے میں ایک دوسری ذہنیت، ایک دوسرا مسلک ہے، اور وہ یہ ہے کہ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ۔ عام درجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے وجہ کا لفظ جو میں ابھی عرض کروں گا کیا ہے، جھکا دے اپنے وجہ کو خدا کے سامنے۔ وجہ کا لفظ بڑا ہی جامع لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، اس کے مادے کے اعتبار سے دو معنی ہوتے ہیں، جو چیز کسی کے سامنے سب سے پہلے ابھر کر آئے اسے کہتے ہیں، چہرے کو اسی لیے یہ لوگ وجہ کہتے تھے، لیکن یہ صرف بنیادی مادے کے معنی ہیں، زندگی کے نصب العین کے لیے یہ لفظ، گول کے لیے لفظ، پرپل یا مقصد کے لیے یہ لفظ، اور وجہ طریق وہ کہتے ہیں جس منزل کی طرف راستہ لے جائے اس کو وجہ طریق، طریق کی وجہ کہتے ہیں، اور وہ پوری کی پوری پرسنالٹی یا ذات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وجہ اللہ جہاں آتا ہے تو وہاں خدا کا چہرہ نہیں اس کے معنی ہوتے، ذات خداوندی جسے ہم کہتے ہیں، انسان کی پرسنالٹی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں انسان کے ارادوں سے لے کے اس کی ہر روش کے لیے یہ جامع لفظ آ جائے گا۔ اگر ہم اپنا آپ کہیں کہ جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اس کے کچھ زیادہ بات ہمارے یہاں سمجھ میں آ جاتی، یہ کوئی بات آ گئی سمجھ میں نہیں آتی ہمارے یہاں میں کہنا کہا کرتے ہیں، پر اپنی وجہ تو سنبھال، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ رہا ہے، اس میں وہ سارے کا سارا آ جاتا ہے۔ یہاں وجہ کا ہے، جو اپنی وجہ ہوں جھکا دے اپنے آپ، ارادوں کو، اختیارات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو جھکا دے۔ جھکائے پہلی یہ چیز تو ہو گئی ماننے کی، نظریہ ہو گیا، آئیڈیالوجی ہو گئی، پرپز ہو گیا، واہ واہ محسن، اور پھر حسن کارانہ انداز سے زندگی بدل کرے۔ کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ یوں سمجھیے کہ اس نے، یوں ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں، اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، بہت مضبوط سہارا تھام لیا۔ بات سہارا نہیں ہے، عروہ عربوں کے ہاں ان کا جغرافیہ ان کی زندگی کو سامنے رکھیے نا، وہ سدہ میل تک ریگستان ہی ریگستان چلا جاتا تھا، سبزے میں کہیں نام نہیں ملتا تھا، جہاں کہیں उनके यहाँ तो चार खजूरों के दरख्त कहीं खड़े हों तो उनको जन्नत कहते थे। ये जो बाग में हमारे यहाँ आड्डा होती है नहीं है नालियाँ, उसको नहर कहते थे। तो उनके यहाँ ये सब्जा दरख्त पत्ते और फिर मवेशियों के उनका दारो मदार था। तो अब मवेशी जिंदगी का मदार हो चारे के लिए, वहाँ वो इतना रेगिस्तान सैकड़ों मीलों तक वहाँ सब्जे का निशान ही नहीं, वहाँ इस किस्म के दरख्त और उनमें से ये खजूर का दरख्त वैसा ही है, बबूल का भी वैसा ही होता, ऐसे दरख्त जिनकी जड़े पताल तक गई हुई हूँ, बहुत दूर तक ये गिने जाती है, तो वहां से ये पानी लेते हैं, ये दरख्त मसलन खजूर जो है। और अगली सी शर्त उनके कि उनके खिजा का मौसम न आए, 12 महीने उनके पत्ते सरसब्ज रहे। जिस दरख्त की ये कैफियत उनके यहाँ होती थी कि बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी मौसम में भी उसके पत्ते नहीं झड़ते थे और उस पर भरोसा किया जाता था कि यहाँ अगर हमें चारा नहीं मिल रहा तो वहाँ चलिए, वहाँ वो दरख्त हैं, वहाँ चारा मिलेगा। इस किस्म का सहारा जो होता था कि जो कभी दवा ना दे और कभी खुदा दीदा ना हो, उसको वो उरवा कहते। जिसने ये तरीका अख्तियार कर लिया कि अपने सामने मंजिल मकसूद वो रखा जो खुदा ने मुतय्यन किया, अपनी तवज्जो उधर कर मरकूज कर दी, अपनी आरज़ू मकासद मतालब और गोल डेस्टिनेशन वो मुकर्र कर दिया, यूं समझ लीजिए कि उसके यहाँ उन दरख्तों का दाव उगाया कि जिन पे कभी खिजा नहीं आ जाए। वाहिल्लाह है आपके बदतुलामू, यानी करें क्या, सारे मामला जितने भी हैं सोचे समझे मशवरा करें गुफ्तगू करें बहस करें, आके बदतुलामू आखिर अमर वो ये देखे कि खुदा क्या कहता है। कहा ये दोनों रविशें सामने आ गई, एक ये कि मां अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, मां वजदना अलैह आबाना की तरफ आने दीजिए, और दूसरी रविश ये है कि अपने इरादों तक को खुदा के आसाम के सामने झुकाएंगे और फिर हुसन काराना जिंदगी बसर करेंगे। तो ये वो काम होगी कि जिसके शजरे हयात पर कभी खजा नहीं आता, एवर ग्रीन। दूसरी जगह है तो थी उतला हाकुल्ला दायम, यहाँ तो पत्ते ही सिर्फ कहा है, वहां तो ये कहा है ऐसा दरख्त जो फल भी देता रहे हमेशा। दोनों रविशे सामने रख दी और उसके बाद कहा अमान काफरा पला या जुम का कुफ्र, और अगर कोई इससे इनकार करता है इस रविश के जो हमने बताया है इसके खिलाफ जाता है, ए रसूल तुम्हें इससे अफसरदा खातर होने की क्या जरूरत है, क्या बात है रसूल की। बड़ा नासे मुश्किल होता था, बड़ा हमदर्द मालूम होता था। दूसरे कई मकाम पे ये आया है कि तू तो अपनी जान खुला लेगा इस गम में कि ये लोग सही रास्ते पे क्यों नहीं चलते। और उसके बाद कहा ये है कि अगर हमने इन्हें जबरदस्ती सही रास्ते पे चलाना होता तो रसूल तुम्हारी रसालत की वही की जिब्रील की जरूरत ही क्या, हैवानात भी तो चल ही रहे हैं, उनकी तरफ कौन सी रसालत आती। तो इसलिए तुम्हें रंगीन होने की जरूरत नहीं है। तो गोया रसूल की ये सूरत नहीं थी कि ये अगर इसको नहीं मानते थे तो ये जो डंडा हाथ में लेके कहता था कि ताकि ऐसी भी तहरीर नहीं मानते क्यों नहीं है। कुरान उनसे कहता तुम्हें अफसरदा खातिर होने की जरूरत नहीं। तो बाबा मुकद्दम चीज तो ये है जो हम कह रहे हैं कि इंसान का इख्तियार इरादा बरकरार रहे। ये जो रविश जिस पे चलने तो हम कह रहे हैं उसका मकसद ये है, ये जो दूसरी रविशें इंसानों की बनाई हुई है उसमें इनके अख्तियार इरादे को फलम किया जाता है। और यहाँ अगर इस रविश में भी तुम ये कहो कि इनका अख्तियार इरादा फलम कर के किसी तरह से उनको मार मार के उस रास्ते के ऊपर चला दिया जाए तो ये हमारा मंशा नहीं, इनकी जहनीयत उस तरह से बदलनी है। वाले महमूल किताब अगर हिकमा वजूद की हिम, इनकी जहनीयत बदलो, इनकी नफसियात को बदलो। इसलिए अगर इसके बावजूद ये अपनी जिद और हद पे कायम रहते हैं, बात सुनना नहीं चाहते, अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा नहीं, तुम्हें इसमें गम करने की कोई जरूरत नहीं है, रहना मर्जी हो हम। ये जो इश्तिहारी मुजरिम भागे फिर रहे हैं ना, ये भाग के कहीं जा नहीं सकते, हमारी मम्लकत की हदूद से बाहर जा ही नहीं सकते। इलेना मर इन्होंने आना है यही, भागे हुए मुजरिम ने आना है यही हमारी अदालत में, भाग नहीं सकते। तो इसलिए तुम क्यों गम खाते हो? थोड़े दिनों के बाद, थोड़े अरसे के बाद देखना ना किस तरह से ये पाद अजौला जहाँ खाने में खड़े होंगे। फानु नब्बे हम बेमा आमेदू, यहाँ इनका अमालनामा सामने रखा जाए। ये था जो करते थे। इन्नल्लाह अलीम, पहले कहा अलीम आलिम, अलीम आपको मालूम है, आपको मालूम है कि जिस बाद में ये लफ्ज आता है उसके माने होता है मुसलसल, यानी वो चीज नहीं है कि किसी वक्त हमें इल्म होता है किसी वक्त नहीं इल्म होता, मुसलसल मुतवातर जो चीज है कि हमें इल्म होता है। और इल्म किस चीज तक का होता है? बिगाते सुधूर, यही नहीं कि जो अमाल सरगर्द हो जाते हैं, जो सीने में गुजरने वाले इरादे हैं, हम तो उनको भी जानते हैं। वहां जब वजूद कहा था तो वो आरजुएं और तमन्नाओं के ऊपर भी तो हर्ज था, और असल चीज तो वही है जो सीने में गुजरने वाले ख्याल होते हैं। इंसानियत तो उन्हीं से बनती, बाकी रहा ये कि अभी फौरन पकड़े क्यों नहीं जाते? तो कहा हमारा जुर्म जो असूल हमने बता रखा है, नुमते हम कलीलन, मोहलत का वक्फा होता है, झट से गिरफ्त नहीं कर दी जाती, इनको समझाया जाता है, वक्फा दिया जाता है, मोहलत दी जाती है। क्योंकि उसने तो इनसे कहा ना कि अपने इरादे से ये सब कुछ अख्तियार करो जो हम कह रहे हैं, इसके लिए वक्त दिया जाता है, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, नमस्ते हम कर भी नहीं। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो आगे लाए सुन मान नल कर ये नहीं होगा तो फिर जैसे कहते हैं ना घसीट के ले आएंगे हम यहाँ, उनको कशा कशा यहाँ दे के आ जाएंगे, भाग नहीं सकेंगे। कहा ये चीज इनके यहाँ, कहा आइए जरा इनकी तरफ, कि तुम खुदा की तरफ दावत देते हो, ये कहते हैं हम खुदा को तो पहले ही मानते, ये कौन सी नई दावत? ये दुनिया में ये अब तो कुछ ज्यादा बढ़ गया, ये कम्युनिज्म की वजह से बहरियत जिसे कहते हैं खुदा की हस्ती से इनकार, वरना बाकी यूरोप जितना भी है वहाँ वो लोग खुदा को मानते हैं। पुराने करीम ने खुदा के मानने और खुदा के मानने में बड़ा फर्क, वो क्या खुदा को मानते हैं, यूरोप का साइंटिस्ट भी मानता है, आम यूरोप के लोग भी मानते हैं, क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, उसने इस कायनात को पैदा किया है, तो ये भी मानते हैं कि कायनात में कवानी ने फितरत या कवानी ने खुदाबंदी का फरमा है खारजी कायनात में, वो ये भी कहते हैं कि खारजी कायनात में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह गॉड, दार मुतलक उसी का है, ये सब कुछ मानते हैं। तो खुदा को तो वो मानते हैं, फिर उनको खुदा के मानने की दावत क्यों दी जाती? यही नहीं, अहले किताब यहूद नसारा ईरान के मजूसियों तक वो अहले किताब कहलाते, यानी वो कहते थे हमारे पास किताब मौजूद है जो खुदा ने हमारे पैगंबर की तरफ भेजी, उन्हें भी दावत दी जाती थी ईमान लाने की खुदा के कुरान के खुदा की तरफ। तो ये क्यों था ये कुछ? तो ये बात कई दफा आ चुकी है, तो खुदा का मानना, मैंने पहले भी ये कहा था, कभी किसी से पूछिए कि इसके माने क्या है, कि मैं खुदा को मानता हूँ, यानी क्या मानते हो तुम? कहते हो मैं खुदा को मानता हूँ, वो कहता मैं नहीं मानता, क्या फर्क है तुम दोनों? बाद अल्फाज होते हैं आसमान सब मैं तुम अंतम व अदाओ की, तो ये कुछ अल्फाज हैं इस्तलाहात हैं, कुछ तुम्हारे अदाओ आजाद की तरफ से चली आ रही है, कुछ तुमने अपने यहाँ घर ली है, बताओ जरा खड़े होके इसके माने क्या हैं जो तुम कहते हो कि मैं खुदा को मानता हूँ, कहो खुदा के कवानीन को मानता हूँ। बात बात सुनाइए, खुदा के मानने वालों से मुतल्लिक कहा है वाला इन शालता हूँ मन खलक समावात वल अर्दा लयकूदुल्लाह, तुमसे भी पूछो कि ये कायनात बनाई किसने है, तो ये भी कहेंगे कि खुदा ने ही बनाई। तो कहा कि यहाँ तक ही क्यों रहते हो, दूसरे मकाम पे है सामना ये कुछ नहीं, तो जब यही बात हम इंसानी दुनिया की तरफ आते हैं तो वहां तुम्हें क्या मौत पड़ जाती है? कहते हो कि नहीं यार, यहां तो इंसानों के बनाए हुए कवानीन कारफरमा होंगे। तो गोया खुदा का दायरा खारजी कायनात तक महदूद हो गया, तुम्हारी दुनिया में वो नहीं आता। अब ये माने हो गए खुदा के मानने के, खारजी कायनात खुदा ने बनाई है या कैसे बन गई है, बाई चांस आ गई है, छोड़ी है, इसका असर क्या पड़ता है इंसान की जिंदगी के ऊपर? असर यहां आके पड़ता है तो इंसानी दुनिया के अंदर खुदा की सवरेनिटी इकतदार मुतलक उसके कवानीन उसकी हुक्मरानी कारफरमा हो, यह है खुदा को मानना। कहा तुम बाहर की कायनात में ये मानते हो और ये कहते हो कि क्या बात है साहब, खुदा के कवानीन, सुभान अल्लाह साहब, क्या फूल फुलाया, क्या फल दिए, क्या चांद हुए, क्या सितारे हुए। कहा ये चीज जो है वहां तक तुम जो रखते हो, आगे बढ़ो, कुल हम्दुलिल्लाह अलहम्द, तो पूरी की पूरी कायनात के अंदर हम खुदा की जो है ना उसका इतराफ करो, इंसानी दुनिया के अंदर भी तो इतराफ करो, वहीं तक क्यों रहते हो? मान लो इंसानी दुनिया के अंदर भी तो इतराफ करो, वहीं तक क्यों रहते? मान लक्ष यालमून, बात यह है कि अक्सरियत हुई है कि जो इलम की बिना पे बात नहीं करती, मैं चली आई है एक बात बहुत दोहरा दी जाती है, इलम की बारगाह से इनसे पूछो कि माने क्या, और फिर जब उससे एक्सप्लॉयड जब कहा किया जाता है तो वो तो पूछो ही नहीं। रशिया के खिलाफ जब ये कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज थी ना यूरोप की और अमेरिका की सरमायादार मुल्क, तो रूस के खिलाफ इन्होंने एक महाज कायम करना था। अब इन्हें ये मालूम था कि मुसलमानों के ममालिक जो हैं इस पे अगर वो उनका असर महसूस कर गया तो ये ममालिक जो हैं वो तो इनकी बीसियत है कि उन्होंने इनको वहादत में कभी तब्दील नहीं होने दिया। मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक एक बहरे बखार है अजीजा ने मान, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी जोग्राफियाई पोजीशन, रॉय अर्थ की बेल्ट है यहां से वहां तक, ठाठे मारता हुआ समुंदर, इनको ये खतरा था। तो इन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल किया, आपको शायद याद होगा, उस जमाने रूस के मुतालिक इन्होंने कहा कि वो तो है दारिया खुदा का मुनकर, और इन्होंने इधर कहा कि बिलीवर्स इन गॉड यूनाइट टुगेदर, आओ खुदा के मानने वालों आओ हम इकट्ठे हों, मुलाजा फरमाओ खुदा के मानने वाले, तो उनके मुकाबले में महाज बनाने के लिए ये खुदा का नाम जो था उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा। थोड़ी सी इजाजत दे रहे तो अर्ज करूं कि देखे खुदा इस्तेमाल कैसे होता है। ब्राह्मण बैठा हुआ रोटी पका रहा था, बाहर बैठा था, दो चार पका के रखी हुई थी, एक कुत्ता आया, उसने आके दो चार रोटियां मुंह में ली, उल्लू भागा। अब उसने इधर उधर देखा तो कोई और कोई वहां पत्थर वत्थर था नहीं, गणेश जी की मूर्ति वहां पास होती थी जिसकी प्रस्तुतकार था, उठाया और जोर से मारी, उसके मुंह लगी और उसके रोटियां फैलती और चू चू करता चला गया, जाके रोटी भी उठाई, गणेश जी को भी कह रहा है कि सारी उम्र तुम्हारी पूजा आई, काम तुम आए आए हो। तो गणेश जी एवं काम आ जाते हैं, अगर बिलीवर्स इन गॉड यूनाइट टूगेदर, यानी हमें बचाओ खुदा के लिए, रशिया के रूप से बिलीवर्स इन गॉड, जब किया तंग बुतों ने तो खुदा याद आया, समझ लिया। ये जो है ना कि वाला साल का हम मन खल के समावाते वाला अड्डा लगे पूरे लगे ऐसे इनसे पूछो कि खुदा ये कायनात किसने बनाई है, आगे बढ़ के कहेंगे साहब खुदा ने बनाई है, तो ये हम और आप एक ही होगा, आप भी कहते हैं खुदा ने बनाई, हम भी कहते हैं खुदा ने बनाई। इनसे कहा कि लिल्लाह मा फी समावात वल अर्द, मा फी समावात तक क्यों रहते हो, अर्द की तरफ भी तो आओ, उसकी जो सवरेनिटी इन दी आउटर यूनिवर्स है अपनी यूनिवर्स में भी चला है, लिल्लाह है माँ से समावात वाल अर्द, एक लफ्ज में सारी बात क्या है, ये समावाती खुदा को तो मानेंगे सारे, अर्द के खुदा को नहीं मानेंगे। कुरान ने जो कहा है वह इलाह समाए व इलाह अर्द, दूसरे मकाम पे नखेड़ के बात करती, निखार के जिसे कहते नहीं, नखेड़ के और जाती, अगला लफ्ज भी और पंजाबी का सुनना है तो गेरवा करके डाली, इलाह समा व इलाह अर्द, क्या बात है कुरान, वो तो इमाम में रहने नहीं देता अलीवान, वरना ये दो अलग कहने की जरूरत क्या थी? और तो इलाह के माने नहीं समझ लिया आपने, जब लाला आप कहते हैं तो इलाह के माने इलाहुल अर्द, कहा इलाहुल अर्द माने तो फिर खुदा का मानना है, समा मानने से बात क्या बनती, अर्द में कौन इलाह है? तुम्हारी अपनी जिंदगी के अंदर, तुम्हारी माशी जिंदगी के अंदर, सियासी जिंदगी, इंसानी जिंदगी के अंदर, यहाँ भी उसी इलाह को मानो, इसे फिर कहेंगे इलाह, वरना ये बात के हमने खुदा को मान लिया जो कायनात का बनाने चलाने वाला, चाहे इन्नल्लाह वल गनीयुल हमीद, वो मोहताज नहीं है तुम्हारे इसमें, वो मुस्तग़नी है और हमीद, तुम कहते हो कि हम प्रेज टू गॉड, ये है ना इनके यहाँ का, ये खुदा की तारीफ हम भी करते हैं गिर हमेशा, वो कहता है मुस्तग़नी है तुम्हारे इसमें हमीद, जब तुम नहीं थे, कायनात तक नहीं थी, वो उस वक्त भी गनीयुल हमीद था, वो तुम्हारा मोहताज नहीं, बाकी रहा ये खुदा उसकी कायनात और ये कितनी है, तुम्हारा ये महदूद जहन क्या और खुदा की ये खुदाई कायनात उसके कवानीन, ये जो है इनका तुम कभी हसर और अंदाजा ही नहीं कर सकते, अंदाजा लगा ही नहीं सकते, इन फाइनाइट जो है लामहदूद जो है वो महदूद जहन में आ ही नहीं सकते, तुम अपने दायरे के अंदर की बात करो, वलाव अन्ना माफी दर्द मिन शजरत अकलाम वल बहर या मुद्दू मिन बही सदा तो अद फिर मानजत कले मासुद्दा, खुदा की बात है, खुदा की बात है, दुनिया भर के दरख्त पलने बन जाए, ये समंदर और इनके साथ और कई समंदर रोशनाइयां बन जाए और उसकी बातें लिखने लगे, ये खत्म हो जाए वो खत्म ना हो, यानी बात उसने कहना इन्फिनिटी की, लामहदूद जो है वो महदूदियत के अंदर आ नहीं सकता, दुनिया भर के शजर समंदर इनके साथ और ये कितने भी इकट्ठे कीजिए ये तो महदूद होंगे, लामहदूद महदूदियत के अंदर आ नहीं सकता, महदूदियत अपने ही दायरे के अंदर उसको समझ सकती है, इसीलिए उसने ये कहा है कि जो कुछ रह जाता है जो कुछ अपने मुतलक हम तुम्हें बताते हैं वहीं तक रहा कर उससे आगे तुम जा नहीं सकते, और ये सारा कुछ जो है इन्नल्लाह अजीज हकीम, फिर बार बार मैंने अर्ज किया अजीज कहता है जहां वो अपने आप को साहिब गलबा, साथ ही हकीम कहता है अपने आप को, गलबा इस्तेदाद का नहीं है, सहरमानियत का नहीं है, फिरौनियत का नहीं है, बल्कि रश्म रीजन पे मबनी है, हिकमत पर मबनी है, और इसलिए ये कायनात का सिलसिला इस तरह से चल रहा है, वरना खैर मानियत के रूप से तो ये सिलसिला नज्म नस्ल इस अंदाज से नहीं चल सकता, हिकमत ऐसा अब रहा कि ये तो इनफाइनाइट बता दी, ये कायनात पूरी की पूरी एक पत्ती के साथ दूसरी पत्ती नहीं मिलती, तनव्वो इतना है, एक आयत आ रही है सामने और मैं समझता हूँ कि मैं क्या अर्ज करूँ इसके लिए, तो किताबें लिखी जाए निसाब में दाखिल हो फिर कहीं जाके इसके मफहूम के अहाता कुछ किया जा सके, कुरान का बुनियादी नुक्ता ये है कि कायनात हो या इंसानों की दुनिया के तरफ हो आता है, ये वहदत है, एक ये पूरी इंसानियत आलमगीर इंसानियत, हम तो बिरादरी तक या ब्रदरहुड तक ही रहते हैं ना, उसमें भी अफराद अलग अलग नजर आते हैं हमें, वो तस्वुर कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा देता है कि जैसे जैसे पूरी इंसानियत वन इंडिविजिबल होल हो, एक नाकाबले तकसीम वहदत, वो जो लहू खुर्शीद का टप के अगर जर्रे का दिल चीरे, आज की साइंस इस पे आ रही है, ये अभी अभी जो खबर आई है ना कि वो डॉक्टर सलाम को एक नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर, तो बात तो टेक्निकल है और इतनी बड़ी साइंस की है कि हम भी नहीं समझ सकते, वो कह ये रहे हैं कि इससे बेशतर तबीयात ने आइंस्टाइन तक ने ये कहा था कि ये चार बुनियादी अनासर हैं कि जिनसे ये कायनात जो है, क्या कहा जाए, बनी है तो हम नहीं कह सकते, ये कंप्राइज चार, इन्होंने कहा कि आगे अब जो तहकीक करनी हमने शुरू की है तो हम इस तरफ चले जा रहे हैं कि नहीं ये बात गलत है, असल में एक ही वहदत है, चुनाचे ये जो उनका कारनामा है, ये जो तीन साइंटिस्ट मिले हैं, इन्होंने वो चार को रिड्यूस करके दो तक ये ले आए हैं, और आगे चले हैं, चले हुए हैं आगे। यानी ये मैंने अर्ज किया ना कि बेचारा मुश्किल है आम दर्द के अंदर बात अर्ज करना, तो ये एक वहदत है। वो वहदत इस किस्म की है, मैं अब आयत आपके सामने बड़ी मुश्किल आयत है, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, तुम्हारी पूरी इंसानियत की तख्लीक और इसकी बासत नशत खानियत डुबकी से कहो तो नजर पे ये आएगा कि एक एक फर्द अलग अलग है, इस तरह से हम ये करते हैं, ये बात नहीं है। इंसानियत एक वहदत है, ये सारी तुम्हारी तख्लीक और बासत कनफ्सिन वाहिदा है, वन इनविजिबल वाहिद। ये तसव्वुर जो है वहदत इंसानियत का अजीजा ने मान 1400 साल पहले कुरान दे रहा है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक मुवाकात का, ब्रदरहुड का, आलमगीर बरादरी का यहाँ तक ही तसव्वुर आएगा। ये के वहदत है ये इंसान की, आपके दिल में जख्म हो और मेरे कल्ब में टीस उसकी पड़े। साइंस के इंकशाफात ला रहे हैं इस तरफ इंसान के जहन। कभी आपने देखा कि लंदन में बैठे हुए एक कमरे के अंदर इंसान वहां कुछ बातें कर रहा है, आप अपने कमरे में बैठे हुए उसी वक्त, यानी जब मैं उसी वक्त कहता हूँ तो स्प्लिट ऑफ ए सेकंड का भी फर्क नहीं होता, ये बात शायद हमारी समझ में ना आए, यानी उसी वक्त वो तमाम की तमाम बात हमारे सामने आती है, तस्वीर हमारे सामने आती है, रंग हमारे सामने आती है। आप देखते हैं कि फासला को किस तरह से खत्म, यानी वादत हो गई, वो और मेरा सेट, हमारा सेट जो यहाँ है, उन दोनों में कोई तकलीफ नहीं रही यहाँ तक चले, और यहाँ बैठे हुए चांद के ऊपर जो गए हुए हैं उनके साथ जो रबता है, कितनी बड़ी वहादत है। मुझे तो वो वाकई नहीं भूलता, मैं फिर दोहरा दूं, जहाँ तक गुजरा है हमारे जहनों में नहीं आ सकता, हमारे जहनों में क्या आएगा, हमारे यहाँ तो गनीमत है। अब उनको मुसीबत पेश आई तो ये लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करने लग गए, वरना पहले तो इनका फतवा मौजूद है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हराम है। चांद पे जो गए हुए थे उनका रबता था, यहाँ जो जमीन के ऊपर कंट्रोल स्टेशन तो उनका जमीन पे है ना, तो वहाँ इन्होंने उससे बात की, वो जो था इंजन के ऊपर बैठा हुआ कोई, तो इन्होंने कही तो उसने कहा कि जी मैं हूँ वो नहीं है, वो जो पैदा था, उन्होंने कहा हमें पता है कि वो नहीं है, हमें पता है वो सो रहा है। उन्होंने पूछा कि जी ये तो ठीक है कि आपने पहचान लिया होगा मेरी आवाज से कि मैं वो नहीं, आप ये कह रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि तुम नहीं हो वो नहीं, हमें ये भी पता है वो सो रहा है, तो ये कैसे पता है सो रहा है। उसने कहा कि उसकी जो हार्ट बीटिंग है, पल्स की धड़कन जो है बीटिंग, उसका ग्राफ हमारे पास है, ग्राफ है उसका कि कितनी उसकी नब्ज हमारे यहाँ उसको तो कहते हैं ना दिल की धड़कन की जो होती है बीटिंग, और ये असूल है कि सोने वाले की जो बीटिंग होती है कम होती है जागने वाले से, जो पिछले 10 मिनट से उसकी बीटिंग में फर्क आ गया है, इसलिए हमें पता कि सोगी। आप देखते हैं वादों की तरफ किस तरह से इंकशाफ चलेगा, इस एतबार से या इस नुकता नगाह से जी चाहता है कि कुछ और भी हजार बरस जी ले हम, कि देखें क्या क्या इंकशाफात होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आने वहां जा देखे यहाँ तो फिर भी टीवी सेट खरीदना पड़ता है, तो मुक्ता ही हो रहा है जन्नत में कोई चीज दिखती नहीं है अभी वाले में, कहीं नहीं देखा जो वहां खरीदी जाएगी। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, क्या होगी ये कैफियत अजीज आने वाली, पूरी इंसानियत वन इंडिविजिबल होगी, इल्ला कनफ्सिन, इन्नल्लाह समीउन बसीर, बात यूं ही नहीं अफसाना कह रहा, सुनता हूँ देखता हूँ, सुनता हूँ देख कर कहता हूँ, सुनकर कहता हूँ कि तुम्हारी हल्क और बास एक नफ्सिन वाहिदा, सुनकर कहता देख कर कहा, कैसे समझाएं तुम्हें कि तुम्हें इख्तलाफात नजर आते हैं और उस इख्तलाफ के बावजूद वो इख्तलाफ होता नहीं है। अब देखिए अजीजा ने मन 1400 साल पहले के गद्दी को भी समझा रहा है और आइंस्टाइन को भी समझा, आप हैरान होंगे कि आइंस्टाइन से आगे तो ये बड़े हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी जो थी वो बल्कि उससे भी पहले टाइम के मुतल्लिक, जो वक्त के मुतल्लिक इनकी थ्योरी है ना, साइंस फिलोसफर और साइंस कठी हो जाती है वहाँ, बर्गसन इसका इमाम है, उनका ये है कि हम तो वक्त को मापते हैं ना, कल जिन्होंने कहने हैं कल गुजरा हुआ, वो ये था ना कि आज सुबह जब सूरज उतरू नहीं हुआ था, उससे पहले रात थी, उससे पहले भी पहले दिन था, तो हमने तो तस्लीम कर लिया ना कल का दिन सूर्य गुरूब होने तक, सूर्य गुरूब हो गया तो फिर वो रात आ गई। कहीं हमने कहा रात 12 बजे से दूसरा दिन शुरू हुआ, हमारे यहाँ सूर्य निकलने के बाद दूसरा दिन शुरू हुआ, फिर ये अगला दिन जो है हमने इसका कुछ नाम रखा, इसकी कोई तारीख रखी, तो है ना ये नजर आता अलग अलग, कल अलग, रात अलग थी, आज दिन अलग। इन्होंने ये कहा कि ये चीजें जितनी भी हैं ये तो हमने एक मिसाल जो दी है बर्दिशान ने कि गज के ऊपर ग्रहों के निशान लगा रखे हैं, मिसाल है तो ग्रहों का वजूद नहीं कुछ होता, हमने अपनी आसानी के लिए मापने के लिए वो ग्रहों के निशान लगा रखे हैं। ये वक्त का जो गज है उसके ऊपर हमने दिन और रात के निशानात लगा रखे हैं। दर हकीकत ये इस तरह से तकसीम हुआ हुआ नहीं है, ये बल्ब खान की थियरी आइंस्टाइन ने आके फिर इसके बाद इसको प्रूव किया। इस दौर की बड़ी गुनाह थियरी जो है दी जाती है वो ये कहा जाता है कि ये अलग नहीं है, दिन और रात जिन्हें आप कहते हो ये तो निशान लगा रखे हैं तुमने। अजीजा ने मन ये कहने के बाद अल्लाह का नफ्सिन वाहिदा समझा रहा है ये बात उस गद्दू को भी आइंस्टाइन को भी, कहा अलम तरा, क्या तुम देखते नहीं हो, अन्नल्लाह यूलिजुन लैला फिन नहार व यूलिजुन नहार फिन लैल, कहा ये दिन और रात जो तुम देखते हो ये नहीं होता कि दिन जो है ये इतना सा होता है वो कहीं चला जाता है, फिर एक मुसम्मात रात होती है वो कहीं से यूं उभर आती है क्या जुल्फे लिए हुए, फिर वो कहीं चली जाती है, फिर एक ये मिस्टर दिन होता है ये कहीं से आ जाता है। अजीजा ने मन यूं नहीं जुल, ये लफ्ज ऐसे होता है, कभी आपने देखा है ये साया किस तरह से बढ़ता है, ये धूप किस तरह से घटती है, कहाँ जाती है, ये साया जो बढ़ रहा होता है वो धूप कहाँ जाती है, और जब धूप आ रही होती है तो ये साया कहाँ चला जा रहा होता है। साया और धूप हमारे नजदीक रोशनी और साया दो अलग अलग चीजें हैं, ये जो आ रही होती है धूप या रोशनी और साया कहीं जा रहा होता है, ना वो आ रही होती है ना वो जा रही होती है, ये क्या चीज है, ऐसी चीज जो इस तरह किसी के अंदर दाखिल हो जाए कि वो दर हकीकत दाखिल ना हो, हमें दाखिल होती हुई नजर आए, उसके लिए वजह लगा जाता है, कहता है दिन और रात ना ये जाता है ना वो आती है, वो तो यूं एक दूसरे के अंदर जाती है, तुम्हें नजर आता है जैसे आ जा रहा है, ये आ जा नहीं रही होती। अजीजान मान इन लफ्जों पे झूल उठा था तो ये अल्फाज है, हम तो ये जानते हैं ना सूर्य रूब हो गया, वो रूबी का ही नहीं होता, वो तो हमारी आंखों वहां तक उसको देख रही होती है, हमारी आंखों की वो हद है हमारी बीनाई की, उसके बाद जरा सा वो कदम के नीचे जाता है उधर वाली जो आंखें होती है उसको देख रही होती है, वो तो उसी तरह से होता है, ये कहीं जाता नहीं कहीं आता नहीं। यूलिजुन लैला फिन नहार, यूलिजुन नहार फिन लैल, लोग समझते हैं कि ये क्या क्या, ये समझाने के लिए कि ये इख्तलाफात तुम्हारी निगाह से पैदा करता है, यह समझने के लिए तुमने ये पैदा कर रखे हैं, वरना ये एक नफ्स वाहिदा की तरह दरख्त की पत्तियां तुम्हें अलग अलग नजर आती हैं, खजान के मौसम के अंदर कोई पत्ती नहीं होती, बाहर आती है तो फिर तुम्हें ऐसा नजर आता है जैसे एक एक पत्ती अलग अलग निकल गई होती है, वो पूरा दरख्त वन यूनिट होता है। दिन और रात टाइम जिसे कहते हैं बड़ा अहम मसला है इस वक्त हमारे यहाँ फलसफे और साइंस में कि ये अलग अलग चीज नहीं है, वसखर शम्स वल कमर, और इसके अंदर इतने इतने अजीम शान किर्रे जो हैं बगैर किसी और था तरावना है आमदन तरावना है बगैर किसी ऐसे सुकून के जिन्हें तुम देख सको, किस तरह से ये एक कशिश पे ना आंखों से ना देखे जाने वाली कशिश से किस तरह से ये चलेगा, मुअल्लक ही नहीं है एक जगह 1400 साल पेशतर अजीजा नमन बतले मुसी निजाम था अफलाक, ये चलना जो था ये उनके जहन में नहीं आ रहा था, उनके यहाँ ये चीज बात थी कि जमीन वो उसकी जमीन को साकिन मानते थे, घूमने वाली मानते ही नहीं थे, वो चट्टी भी मानते थे गोल मानते ही नहीं थे। ये वो दौर है कुरान के नजूल का जहाँ वो ये कह रहा है सख्तर शमसा वल कमरा कुल्लुन जजरी, ये साकिन नहीं है ये सब चल रहे हैं, जरा जजरी तो होता है जो चला जा रहा हो, तो इससे ये हुआ कि ये क्या हमेशा के लिए ये कुछ होगा? ये भी एक बहुत बड़ा आपके यहाँ मसला आ गया। ये अब तो इनको मुनाजों को अहमियत नहीं रही, हमारे बचपन के जमाने में बड़ी अहमियत थी आर्य समाजियों की हुआ करती थी। वो मादे को कदीम मानती, इटर्नल मानते थे मैटर, कुरान इसको हादिस मानता है, इटर्नल नहीं है। तो बड़े मुनाजरे हुआ करते। आज पूरी साइंस के ऊपर आ रही है, इटर्निटी हो ही नहीं सकती इसके अंदर। आज जो वो मैटर जिसको मादा कहते थे उसके वजूद से इनकार हो रहा है, अब तो सिर्फ एनर्जी पे आ गए हैं। लेकिन बहरहाल कुरान ने ये जो कहा कुल्लुन यजरी, ये सब चले जा रहे हैं, कहा इला अजलिन मुसम्मा, हमेशा के लिए नहीं, एक मुद्दत के लिए, इटर्निटी नहीं है इसके लिए, वो तो अबदियत खुदाई के लिए है। अन्नल्लाह बिमा तामुरूना, ये कहा बातें हम बाहर की कह रहे हैं, बता तुम्हें ये रहे हैं कि जिस तरह से हमारा कानून कार फरमा वहाँ है ना, तुम्हारी जिंदगी में भी कार फरमा है। तो कायनात की तरफ मत देखो, अपने आप की तरफ देखो, हम तुम्हारी बातें कर रहे हैं, तुम्हारी बातें। ये सब इसलिए हम कह रहे हैं कि जाले का बयान अल्लाह हुवल हक, अल हक सिर्फ खुदा की बात, सिर्फ उसके कवानी, अबदियत उन्हीं को है, किसी और शायद में। अल हक जो नजरिया ठोस हकीकत बन के सामने आ जाए, मैंने कहा था उसे कहते हैं हक, और वो अल हक है, उसका दिया हुआ हर नजरिया ठोस हकीकत बन के सामने आ जाता है। वरना मायदूना मिन दून हिल बातिल, उसके सिवा कोई भी तसव्वुर अपने जहन के अंदर लाओ, वो अल हक नहीं हो सकता, वो बातिल होता है, तकरीबी होता है, मिट जाने वाला होता है। वह अन्नल्लाहुल अलीयुल कबीर, और वो अल हक तुम्हारी दुनिया में उस सूरत में साबित हो सकता है कि अलूव और किबरियाई जो है तुम्हारी दुनिया के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर हाकमियत इकदार, ये सिर्फ उसकी जात का हो, फिर वो तुम्हारी दुनिया में अल हक बनकर आ जाए, और उसके इन कवानीन के अलावा किसी और के कवानीन को भी ले, बातिल होंगे वो, याद रखो, मिट जाने वाले होंगे। देखो तारीख के औराक को कितने कितने बड़े दसातीर बनाए गए, जवाबित बनाए गए, लोहे की लाठों पे कंधा कराए गए, पत्थर की चट्टानों पे कंधा कराए गए, ये कवानीन वो उन चट्टानों के ऊपर जमाना कदीम की यादगारें बनते रह गए। जिंदा बाकी कानून न रहा, जिंदा और पाइंदा कानून उसी का ही है जो हमेशा तक के तक है और हमेशा तक रहेगा। अल हक वो है, उसके सवा जो भी है अल बातल है। अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, कहा और सुनना चाहते हो? उसे आपको याद है उसने कश्ती की मिसाल दी थी और मैंने भी अर्ज किया था, कहा जरा देखो तो सही, कश्ती एक सुई पानी में डालो तो सीधी नीचे चली जाती, लोहे की हजारों टन वजन का लोहे का जहाज बात की तरह तैर रहा हो, खाली जहाज नहीं, भरा हुआ, लगा हुआ, कहा लेकिन वो एक खास पैमाने तक उसका अगर वजन हो तो वहां तक वो तैरता रहता है, तैरता ही नहीं रहता, मौजों के तलातम में अटकोले भी खाता है। अगर वो वजन हमारे कानून के मुताबिक है तो वो तलातम तूफान वो कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता, वो मौजों के साथ हंसता खेलता हुआ चला जाता है जाले की तरफ। जो ही तुमने उसके इस हुसन में जरा बिगाड़ पैदा किया तवाजुन के अंदर, ये इंसानों के हाथों की बात होती है, तो कहा आप देखते किस तरह से डूबती है कश्ती, रोज तुम जितनी कश्तियां ये डूबती है तहकीक के बाद पता चलता है ना, एक तरफ ज्यादा बैठ गए थे 14 की कश्ती थी 44 बैठा दिए, एक तरफ ज्यादा बैठ गए वो जिन्होंने ढोल नहीं कर लिया गया, ये तहकीक पैदा हो गई। उसने कहा तुम तो रोज देखते हो कि कानून के मुताबिक ऐसी चीज जो बजाहिर मुहैया रकून नामुमकिन नजर आती है, लोहे का जहाज लगा हुआ इतना बड़ा तूफानों का मुकाबला करता हुआ चला जा रहा है, बचरते कि वो हमारा जो कानून है रैकम का जिसे कहते हैं उसके मुताबिक अगर वो चल रहा है, लेकिन अगर उसमें तुमने जरा इधर उधर कुछ किया तो आप देखिए कि वो किस तरह से डूबती है, बस जैसी कश्ती डूब जाती है जहाज को एक तरफ रहा। तजरी बिल्बाड़े बिने ले योरे कुम आया के, बात तो हम कहा कश्ती की करते हैं लेकिन इससे तुम्हारी तवज्जो हम मकबूल कराते हैं एक और बात की तरफ। ये तमाम चीजें जो हैं, ये कश्ती क्यों इस तरह से चलती चली जाती, तो मैंने कहा था ना कि वो हजकोला नहीं खाती कानून के रूप से। इस्तेकामत से एक ही लाइन के ऊपर अगर उसके मुताबिक उसमें वजन है तो वो तूफानों में भी उसी तरह से चली जाती है, उसमें इस्तेकामत होती है। कहता है कहा है कि हम बात तुम्हें कश्ती की समझा रहे हैं, ये है मिन आयात अन्ना फी जाले का ला आयात, लेकिन ये आयत जो हमने या आयात जो कही है कि इससे तुम किसी मकसद तक पहुंच जाओगे, ये किसके लिए है? लेकुन्ने सब्बारिन सबूरिन, अब देखिए कहा लग सदर का आ रहा है, साबिर ही नहीं कहा सब्बार, कहता है बड़ी इस्तेकामत की जरूरत है। कश्ती को तलातम मंदूहियों के अंदर सलामती से साहिल तक पहुंचने के लिए बड़ी ही इस्तेकामत की जरूरत होती है। कानून की पाबंदी एक सेकंड के लिए भी अगर वो छोड़ दे तो भ्रम से डूब जाती, और अगर उसके मुताबिक इस्तेकामत से उसके मुताबिक चलती चली जाए, शुकूर हो जाती है, उसकी मेहनत पर बड़ा लग जाती है। इन बातों के अंदर उन लोगों के लिए निशानात हैं, आयात हैं, कि जो इस कदर इस्तेकामत के साथ इन चीजों को देखते हैं और इस तरह से अपनी रवैये की जिंदगी रखते हैं कि हवादिस-ए ज़माना के कितने ही तूफान क्यों ना आए। मैंने कहा था ना कि उनके यहाँ सबूरन उस पत्थर को कहते थे जो कश्ती में एक तरफ इसलिए रख देते थे कि उसका वजन बराबर रहे, उसका तवाजन उसका कायम रखने के लिए जो पत्थर रखा जाता था उसको वो सबर कहते थे। हवादत से जमाना से आपका तवाजन न बिगड़े, वहां ये है जो सुकूफ होते हैं, इनकी मेहनतें बराबर होती है, हचकोले आए। लेकिन ये खारजी हचकोले होते हैं, क्या बात है कहने वाले की, क्या क्या मिसाल देते हैं। यार अब दरून सीना दिले बाखबर बदे, दुआ मांगी किस किस्म का दिल मांगता है, बाईस मौत सुकून गुहर बदे, अल्लाह ताला ने शख्स को नवाजा था रीना ने मानी, बाईस मौज सुकून गुहर, तूफान आते रहे तला तुम खेजियाँ आती रहे, मौज दर मौज उठती चली जाए, लेकिन उसके अंदर सीख के अंदर मोती का जो सुकून होता है, कहा कि उस सीने में इस किस्म का दिल दे दे कि हवाद से हर से समाजी की तलातम खेजियां आती रहे, ये दिल जो है वो न दे। ये है सब्बार जिसे कहा वाह सुकून लिकुल्ले सब्बार सुकून, कहा ये तो कश्ती की कैफियत है कि अगर उसका कानून के मुताबिक वजन लिया हुआ चले जा रही है, चले जा रही है बाकी तरह इंसानों को वाइजा वशियहुम मौजन का जुलले दाउल्लाह मुखलसीना लहुद्दीन, कश्ती अगर कहीं हजगोले खाने लगी और देखा कि डूबने लगी है तो पुकार रहे हैं खुदा को मौला ताला बजाओ, मौला ताला तेज कर उजारू वाला सितारू वाला पता नहीं किन्नी जमात वाला चला जा रहा, बचा ले तो ये करो बजाओ तो यूं करी साहब, कहा उनकी कैफियत ये होती इस्तेकामत। मौसम कहा था कि होना चाहिए उस वक्त तो ये कुछ होता है बहुत अच्छा, चलिए खुदा तो याद आया, जब भी अतम दूतों में तो खुदा तो याद आया, अरे याद आया है तो याद रखना नहीं कहा, याद रखना कहा फलमना न जाऊ मिल डर रहे समय नहीं हो गया, वो साहिल पे पहुंच जाती है पिछों ना खुदा तो कुछ नहीं होगी नजर मराठी का बॉल गुम हो गया बैग, पहली गलत से कहा गया उसने कहा ग्यारहवीं वाले अगर बैग मेरा मिल जाता है ना तो मैं ग्यारह रुपए की न्याज दूंगा, आगे चला गया सत्रहवीं वाला आ गया तो मैं सत्रहवीं की न्याज दूंगा, बेटा चला गया मानता चला गया, तो एक ने कहा कि सारा बैल तो तुम्हारा ही मेरे दुनिया का जुलूस ही है, तो तुम मनता क्यों मैंने दो सौ रुपये मैं मान लगे आई हूँ, कहने लगा सुन हाथ बैल है बारे में बहुत सलम्मा में जाऊँ मैं जाती है तो टाया बहा यह हो जाएगा है वो भी ये नहीं कि वो जरूर खुदा की तरफ देता है कि जो कम अज कम यानी कम अज कम दरमियान में रहता है बाकी तो सारे के सारे तो जरूर हो जाते वमा यज हजो दे आते ना तुम्बो खतार ये काम है जो इस तरह से चुरा के इनकार ही नहीं सरकशी लड़ते लग जाते हैं हमारे कानून की। दो लफ्ज अजीजा ने मान जहाँ आए
खत्तार और कपूर, कपूर तो है जो कुछ भी हाथ में आए उसको ले धाम पे रखे। ये खत्तार बड़ी अजीब चीज, मुसलसल धोखा दिए चले जाने वाले मुसलसल, इसके लिए तो बहुत से लफ्ज उसके नीचे कहने में डुमरी पर धोखा दे दे कर थक जाने वाला। आ हा धोखा मुसलसल धोखा दे दे कर थक जाने वाला, कहता उसे मौत पड़ती है इन तमाम चीजें आने के लिए। जो ना धोखा देने देता है ना थकने देता है, ये है वो लोग। आए तो रह गए कि दो, लेकिन नहीं जी मामला चूंकि बस नहीं चलता तो संजय फिर कफे कातल में है बूढ़ा हो जाते हैं वक्त। ये वो जो होते हैं ना हमारे टूट उनकी लेंथ होती है तो वो खत्म हो जाता है तो फिर आगे बात नहीं बनती, इसलिए मुझे इनकी मोहताजी है। तो दो आयतें यहाँ की फिर आइंदा ले लेंगे, सूरह लुक़मान की आयत हम 32 तक आए तो तीसरे आइंदा 10 में लेंगे और फिर आगे सूरह सजदा शुरू कर देंगे। कोई बात नहीं, ये तो गज के ऊपर गिरने लगी हुई है ना ये जो आयतें हैं या सूरतों के नंबर हैं या पारे हैं। कुरान करीम तो मुसलसल किताब चली जाती है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस समीउल अलीम, वक्त बदलना।